वंशी विभूषितकरालवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहम् चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनम् सञ्चिनोमि ध्याये नित्यम् महेशम् रजतगिरिनिभम् चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवरा भीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनम् समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिम् वसानम् विश्वाद्यम् विश्ववन्द्यम् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् ॐ यो ब्रह्माणम् विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहम् प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रम् नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 श्रीशङ्कर भगवत्पादविरचिता दशश्लोकी न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुर्न खम् नेन्द्रियम् वा न तेषाम् समूह अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेको वशिष्य शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणा ध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्य शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्य शिव केवलोऽहम् न साङ्ख्यम् न शैवम् न तत् पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकादेर्मतम् विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ट शिव केवल न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरादि बियद् व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेको वशिष्ठः
शिवः केवलोऽहम्
न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः
केवलोऽहम्
न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुस्तदेको वशिष्ठ शिवः तन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्ति न विश्वो न वातैरसः प्राज्ञ
को
अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीय
सदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्
अपि व्यापकत्वाधितत्वप्रयसेद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगतोच्छमेतत् समस्तम् तदन्यत् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न चैकम् तदन्यत् द्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेवलत्वम् न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम्
ब्रवीमि
कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम्
कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था श्रावण मास चल रहा है। जो लोग शिव जी को वेद के मंत्रों से अभिषेक करना चाहते हैं स्वयं, लेकिन आता नहीं हमें, उन लोगों के लिए संक्षेप में पाणिनी जी ने जो 14 सूत्र श्रवण किया भगवान शंकर के डमरू से, जो ये निकला था इसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। ये आप लोगों के लिए आज मैं बोल रहा हूं दोबारा से। ऐ ऊण रील रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घढ़धश जब गढ़दश खफ छठ थ चट तव कपय शश सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। भगवान महेश्वर के द्वारा प्रकट होने से इसको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। और जो श्लोक बोला था, जिस समय सनक सनंदन सनातन कुमार पाणिनि जी पतंजलि जी सब भगवान की आराधना करते हैं, शंकर जी ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, तो तांडव नृत्य और सायंकाल जो नृत्य करते हैं, प्रसन्न होकर के जब उन्होंने डमरू बजाया उस समय का ये श्लोक है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् शिवसूत्र ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला होने से ब्रह्म सूत्र, योग को प्रकट करने वाला योग सूत्र, भक्ति सूत्र, वैसे ही ये है शिव सूत्र। नृत्तावसाने नटराज राजो, प्रदोष काल में जब भगवान प्रसन्न होकर के नृत्य करते हैं, जब डमरू बजाते हैं, नटराज राज है भगवान शंकर, ननादो बजाया क्या ढक्काम, ढक्काम मतलब डमरूम, डमरू बजाया, जैसे रावण ने नहीं कहा डमर 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 निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तु न शिव शिवम, वैसे ही है। और नटराज स्तोत्र लिखा है पतंजलि ने, चिदम्बरम हृदि नटम भजे, ऐसा करके वो कभी सुना देंगे आप लोगों को। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नौ और पांच बार डमरू बजाया, तो उसी में से ये नौ पांच कितने होते हैं, चौदह, यही ये चौदह सूत्र हो गए। किसने बजाया था, उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धांत, सनक और आदि से ले लीजिए पतंजलि पाणिनि जी सबका, उद्धर तु कामः उद्धार करने की इच्छा से सबके कल्याण के लिए। और ऐसा नहीं केवल पाणिनि जी पतंजलि जी का कल्याण हुआ, आज इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो भी संस्कृत भाषा जानने वाले विद्वान लोग हैं सब के सब कल्याण के भाजन हो रहे हैं भगवान शंकर की कृपा से। उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, इस तरह से चौदह सूत्रों के यहां पर विमर्शन हुआ, इसकी रचना हुई और उसी के अनुसार ये संस्कृत भाषा पाणिनि जी ने चौदह सूत्र के आधार पर, फिर पाणिनि अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी प्राचीन व्याकरण बोलते उसको, कुछ लोग अभी भी प्राचीन व्याकरण के पद्धति से ही पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण, लेकिन वो थोड़े कठिन है, सब लोग याद नहीं कर पाते, तो नव्य व्याकरण नाम रख दिया। व्याकरण आदि को समझने के लिए फिर उसी में भाष्य है, कात्यायन जी के वार्तिक है, पतंजलि के भाष्य है, महाभाष्य बोलते हैं। इस तरह से ये चौदह सूत्र आप यदि याद कर लोगे तो इन्हीं से वेद के मंत्र बनते, इन्हीं से संस्कृत भाषा बनती है, इन अक्षरों के अतिरिक्त कोई बाकी अक्षर दूसरा नहीं है। तो आप समझ लो पूरे वेद के मंत्रों से शिव जी का अभिषेक कर लिए, ऐसा समझ लेना। पहले चौदह सूत्र ठीक ठीक याद कर लेना, जब याद हो जाए तो आप जाओ, दो मिनट लगेगा शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने में, और इससे कितना बड़ा फल मिलता है ये आप लोगों ने सुना। दशश्लोकी की चर्चा चल रही है, करीब 21 तारीख से इसके ऊपर प्रारंभ हुआ था प्रतिपादन। हम भला क्या इसके ऊपर प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों का जो उच्छिष्ट है, उनका जो प्रसाद है, उसके माध्यम से हम लोग कुछ अपने जीवन में कल्याण के भागी बने, ये हमारे लिए एक पाथेय बने। उस दृष्टि से जो बन पड़ा वहां तक किया, और आज अंतिम दिन है इस सत्र में, आगे फिर जो भी सत्र में चलेगा, तो प्रथम श्लोक के अभी अवतरण ही चल रहा है, और पहले श्लोक की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या है, बाकी नौ श्लोक अपने आप सरल हो जाएंगे। जल्दबाजी तो नहीं है, जल्दबाजी करोगे भी तो जाओगे कहां, ना तो यहां कोई ट्रेन छूट रही है, ना कोई प्लेन छूट रहा है, तो धीरे धीरे जीवन में साधक हैं हम, साधना के मार्ग पे चलना है। जिस किसी भी तरह से शास्त्र की चर्चा हो और वे संस्कार हमारे अंदर दृढ़ हो, ये कोशिश करनी चाहिए। हमने पंचदशी पढ़ लिया, हमने अमुक पढ़ लिया, वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, आत्मबोध, तत्वबोध, जितने भी प्रकरण ग्रंथ हैं, बृहद ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी और बृहद प्रस्थानत्रयी, खंडन खंड खाद्य, अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत लेश संग्रह, विवरण प्रमेय संग्रह, सब पढ़ लिया आपने। अब क्या करना है फिर? बोले ये जो मन है, ये मन जब तक परमात्मा में न मिल जाए। मन को परमात्मा में मिलाने का मतलब कैसा है? जैसे जल को जल में मिलाना, अग्नि को अग्नि में मिलाना, घटाकाश को महाकाश में मिलाना, इसी प्रकार से यहां पर भी जो जीवात्मा है वही क्या बन जाता है? तो परमात्मा होते हुए ही परमात्मा बनता है या अपरमात्मा परमात्मा बनता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वह प्राप्त ऐसा ही है, जल जल को प्राप्त हो गया, अग्नि अग्नि को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से यहां पर भी समझ लीजिए, तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा जब एक अखंडाकार वृत्ति बनती है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि जो वो वृत्ति बनती है वो कौन सी वृत्ति है? अखंडाकार वृत्ति, स्मरणात्मक वृत्ति, तो वृत्ति का भी केवल उपचार होता है, कोई वृत्ति वृत्ति नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि का नाम सुना है ना? असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये त्रिपुटी भासते रहते हैं, और असंप्रज्ञात में त्रिपुटी की समाप्ति ही असंप्रज्ञात है। जिस योग की बात की जा रही है, वशिष्ठ जी ने राम जी को भी बताया है, योग वशिष्ठ में आता है, और भी बहुत सारे यहां आचार्य उदाहरण दे रहे हैं। एतेन प्रमिति प्रमात्रोः महावाक्यार्थ बोधे भानम अपास्तम। तात्पर्य क्या निकला? षडविध तात्पर्य निर्णायक लिंग भी है। ये वेदांत के जो प्रक्रिया है ना, इसको याद करना फिर क्रम से समझना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो, फिर जो जो उदाहरण देते हैं, उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासा अपूर्वता फलम, संधि करके बोलेंगे तो उपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वता फलम, और इसको अलग अलग करेंगे तो उपक्रमोपसंहारौ अभ्यास अपूर्वता फलम। अर्थवाद और उपपत्ति को मिला के दो वचन हुआ, तो अर्थवादोपपत्ति च दीर्घिकार हो जाएगा। लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये जो लिंग है, पहचान है, किसके लिए? तात्पर्य निर्णय। कोई भी विषय प्रारंभ हो, जिस विषय से हम प्रारंभ करें उसी विषय पर उपसंहार हो, समापन हो। बीच में इधर उधर दृष्टांत भी जाएगा, दृष्टांत के माध्यम से लगता है कि विषयांतर हो रहा है, लेकिन दृष्टांत ऐसा हो जो दृष्टांत को समझाने में सहायक हो। कई बार वक्ता भी कुछ ऐसे दृष्टांत दे देते हैं जो मनोविनोद का प्रसंग होता है। लोग कहते हैं महाराज हंसाते बहुत हैं, वहां हंसाना उद्देश्य कम होता है। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा दृष्टांत दे ताकि आप लोगों को नींद ना आवे। इतने गंभीर होकर के यदि हम प्रतिपादन करने लग जाएं तो लोग क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे। ब्रह्म जो है ना, सहजता ही ब्रह्म है। जब व्यक्ति दिन भर खड़ूस बन के रहता है ना, उसी को लाफिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता है, लाफिंग क्लब में जाना पड़ेगा। और लाफिंग क्लब में जब हंसाते हैं तो वहां झूठी हंसी होने पर भी धीरे धीरे कौन सी हंसी आती है, सच्ची हंसी आ जाती है। कुछ लोगों के हंसने का ढंग ही इतना बेढंग होता है कि उसकी हंसी को देख करके भी आपको हंसी आ जाएगी। और हंसी भी कई तरह के होते, देशी हंसी, विदेशी हंसी। देशी तो है जिसमें शरीर के रूंगटे खड़े हो जाए और नाभि से हंसी निकले, ठहाका मार के जो हंसना बोलते हैं ना, खिलखिला करके हंसना। और ये विदेशी हंसी जो है, मालूम है आप लोगों को? बड़े धीरे धीरे। हाँ, और कहीं विशेष मेकअप आदि किया हो तो उधर बिगड़ जाए, उधर भी ध्यान रहता है, उसी चक्कर में खिल के नहीं हंस पाते, मेकअप न बिगड़ जाए। और कुछ लोग इसलिए नहीं हंसते कि हमारे दांत आदि न दिख जाए, कुछ लोग इसलिए भी नहीं हंसते कि हमारी पोल पट्टी न खुल जाए। कुछ का हंसना भी रोना जैसा होता है, भयंकर भद्दा। तो हंसे तो ऐसे हंसो जो आपकी एक स्वाभाविक वृत्ति दिखाई दे उसमें। नहीं तो आनंद रामायण में कथा आती है, राम जी के दरबार में ना सब अचानक हंस पड़े और राम जी ने दंड देने के लिए कहा कि कोई भी सभा में हंसेगा नहीं। और बहुत उसमें लंबी चौड़ी कथा है, बाद में सुमंत्र जी ने कुछ ऐसी योजना बनाई तब राम जी को समझ में आया कि हंसे बिना कोई रह नहीं सकता। तो सहजता पूर्वक चेहरे में जो ज्ञान होने के बाद बोलते हैं ना मंद स्मित, ऐसी मुस्कान, न तो जोर से ठहाका मार के हंसना, न तो हमें विदेशी हंसी हंसना, सहजता पूर्वक जब देखो कभी भी चेहरे पे कोई मलिनता न दिखाई देवे, हमेशा कैसा हो, प्रसन्न वदनम। भगवान के भी किस स्वरूप का ध्यान करते, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। प्रसन्न वदन, आप फोटो खिंचवाते हो, कैसे फोटो खिंचवाते हो? यदि मुंह लटका भी है तो लोग क्या बोलते हैं, चीज। वो चीज क्या है? स्माइल को बोलते हैं चीज की, पनीर को बोलते हैं चीज। अब मुझे लगता है पनीर के नाम सुन के जैसे बैगन के नाम सुन के मुंह खराब होता है ना, पनीर के नाम सुन के बतीसी दिखती है। एक बार तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ओ तो कद्दू कोई खाने की चीज है, ऐसा एक बार मुंह लटका लेते है तो सब्जी वो भी खाते भी है। इसलिए वो फोटो खिंचाते समय कद्दू आदि का नाम नहीं देते, क्या बोलते, पनीर बोलो, चीज। हंसी आ गई, बोले हाँ ये फोटो ठीक है। और किसी से झगड़ा करते हुए, मुंह लटकाए हुए, रोते हुए फोटो खींचे तो आप क्या कहोगे, अरे ये फोटो डिलीट कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। हमेशा हम चाहते सौम्य मूर्ति, जैसे भगवान के फोटो मूर्ति आदि हमें सौम्य चाहिए। रावण को मारते हुए राम जी की फोटो कोई घर में नहीं रखता, कंस को मारते हुए कृष्ण की फोटो कोई नहीं रखता। आया ना वो रामकृष्ण परमहंस जी, उनके फोटो किसी ने खींची तो दिखाया उनको, तो बोलते ही फोटो हमें चाहिए। बोले आप क्या करेंगे? बोले तुमने ये फोटो उस समय लिया, ये मेरा जो चित्र है, जिस समय मैं मां भगवती का ध्यान कर रहा था, तो इस फोटो को जब जब देखूंगा तो उस वृत्ति को बनाने में हमें आसानी होगी। तो आप जब अपने सौम्य मूर्ति को देखोगे फोटो को, तो जो आपका मुंह बिगड़ा भी होगा ना, तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूं जैसे फोटो में दिख रहा हूं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हो सहजता, ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्मज्ञानी के उठना बैठना चलना, अर्जुन ने जो प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, समाधिस्थ बोला है, समाधि में स्थित हो चुका है। किम नाम समाधि, संप्रज्ञात समाधि तो त्रिपुटी भास रही है, और असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म स्वरूप में वो ब्रह्म साक्षात्कार जो कर चुके, आत्माकार वृत्ति में जो हमेशा रहते हैं, समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतः करणेन गृह्यते। शायद आचार्य का ही है, विवेक चूड़ामणि में होगा। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु, चित्त के अंदर जो भी मल थे सब के सब समाधि के द्वारा निर्धूत हो गए, धो दिए गए, साफ हो गया। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसु निवेशितस्य, निवेशितस्य चेतसः, अपने चित्त को हमने निविष्ट कर दिया, लगा दिया, एकाग्र कर दिया, निरुद्ध कर दिया, किसमें? आत्मनि, अपने स्वरूप में, आत्मा में। और उस समय जो सुख होता है, यत् सुखम निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवि न शक्यते वर्णयितुम गिरा, गिरा मतलब वाणी के द्वारा, वर्णयितुम न शक्यते, उसको हम वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कैसा है वो? स्वयं तद, अपने द्वारा, तद मतलब जो उसको सुख है, अंतःकरणेन गृह्यते, मनः प्रत्यक्चित्ते सविधम अवधायात् तमरुतः प्रहिष्यत् रोमाणः, प्रहिष्यत् रोमाणः बोलते ना, पदच्छेद करेंगे तो प्रहिष्यत् रोमाणः प्रमद सलिलोत्संगित दृशः यदा लोक्या ह्लादम् ह्रद इव निमज्या मृतमयी दधत्यन्तस्तत्त्वम्, दधति अन्तस्तत्त्वम्, दधत्यन्तस्तत्त्वम् किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। हे भगवान, भवान मतलब आप, हे शिव जी की स्तुति की जा रही, हे भगवान आप जो है यमिनः, जो यमी संयमी है उनके द्वारा आप हृदय में उसी तरह से प्रकट होते हैं जैसे जल में डुबकी लगाने के बाद प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य यदा आलोक्य आह्लादम, उस आह्लाद को, आनंद का जब हम अवलोकन करते हैं उस समय हम पूरी तरह से उसमें ओतप्रोत होते डूब जाते हैं। जैसे जल के अंदर डुबकी लगाने के बाद एक भी अंग आदि उसमें दिखाई नहीं देते, बराबर हो गया, पानी तो है, पानी के अंदर चला गया, अब ऊपर भी पानी, अंदर भी पानी, सर्वत्र जल ही जल है। इसलिए वो दृष्टांत दिया, हृदय इव निमज्जा मृतमय, जैसे हृदय सरोवर में निमज्ज निमज्जन होकर के डूब करके वहां पर अनुभव होता है शीतलता का, वैसे ब्रह्माकार वृत्ति में जो डूब चुके, बहुत सारे उदाहरण है। एक हमें इस पर श्लोक याद आता है, ये जो मन है ना, मन एक क्षण के लिए भी लग जाए तो इतना बड़ा फल बताया है शास्त्रों में, वो क्या है मालूम है? एक नदी में नहाओगे तो दूसरी नदी का स्नान बाकी रह जाएगा, गोदावरी में नहाओगे तो गंगा जी बाकी रहेगी, गंगा जी में नहाओगे यमुना जी रह जाएंगी, और गंगा यमुना के संगम में नहा भी लोगे तो फिर कावेरी कहां जाओगे, तो बहुत दूर हो जाएगी। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलीले, ये उसके लिए बताया जा रहा है जिसका मन एक क्षण के लिए अपने स्वरूप में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है, उसको संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने का फल मिलता है। अब मुझे लगता नहीं कि जो कुंभ में नहीं नहाना चाहते और उसके विकल्प खोजते हैं कि ऐसा कौन सा विकल्प हो जिसको कर लेने से कुंभ के नहाने का फल मिल जाए, तो मुझे लगता है उनके लिए यही सबसे सरल उपाय है कि यदि आपने एक क्षण के लिए अपने मन को उस परमात्मा में लगा दिया तो नासिक में नहाओगे तो हरिद्वार का छूट रहा है, क्षिप्रा का स्नान आ जाएगा अगले साल, उसमें भी जाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि आप ध्यान लगा के मत जाओ, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी वहां पर रह रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन जब विकल्प आप चाहते हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है अथवा इच्छा नहीं है जाने की, तो वे लोग कम से कम एक क्षण के लिए अपने मन को किसमें लगा देवे, परमात्मा में। एक क्षण जिसको लगाने का अभ्यास हो गया तो फिर धीरे धीरे भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा ही मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखे। अभ्यास योग बहुत बड़ा योग है, और आपका तो स्वभाव बन गया, हमें लगता है इसमें हम सत्संगी की प्रशंसा भी कर रहे हैं और सच्चाई भी है। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जलपान मिले न मिले, भोजन समय पर मिले न मिले, लेकिन ये सत्संग की खुराक 365 दिन लगातार, आंधी हो बरसात हो ज्वार भाटे आए, समुद्र के किनारे भी अलर्ट कर दिया जाता है जब कोई खतरा हो, यहां कोई ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रेमपुरी का सत्संग बंद होता होगा कि आज नहीं होगा। ये तो 365 दिन आपके लिए उपलब्ध है। जैसे रोज स्नान करना भोजन करना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, ये आप लोगों के लिए एक मानसिक खुराक है। सवेरे सवेरे आप आते हो, अमूल्य समय निकाल करके, आपके पास सारी सुविधा है, सो सकते हो, कौन मना करता है, नहीं आओगे तो कौन आपको बोलता है आना पड़ेगा। लेकिन ये मुमुक्षु का लक्षण है, जिज्ञासु का लक्षण है, और ये सब वृत्ति तब बनती है जब भगवत कृपा हो, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है, एक दिन आओगे दो दिन आओगे। अच्छा, ये प्रमाद एक ऐसी चीज है, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो दूसरे दिन फिर यही होता, आज भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा, और करते करते तो अब नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाता है, और नहीं कुछ भी हो जाए हमें जाना ही है, ऐसा जब संकल्प दृढ़ होता है, नियम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। एक गांव के बाहर था शिवालय, और गांव के कुछ लड़के वहां जाते थे जो संस्कारी नहीं थे, मंदिर में पत्थर फेंके कुछ फेंके, दर्शन तो करे रहे ऊपर से भगवान का अपमान करे। उसमें एक ऐसा भी लड़का था, उसने मन में सोच लिया पत्थर तो फेंकना लेकिन रोज फेंकना है, और एक दिन इतनी बारिश आई पानी भर गया होगा गांव में, लोग गए नहीं, लड़के वो गया, बोले मुझे तो ये नियम पूरा करके ही आना है। गया केवल किसके लिए, पत्थर फेंकने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं। भगवान प्रकट हो गए, बोले तो नियम का बड़ा पक्का है भाई, हा? ऐसे बारिश में भी अपने को कष्ट में डाल के आए, तो नियम में इतनी ताकत इतनी शक्ति है। एक दवाई नियम से न लो ना तो बीमारी ठीक नहीं होती, 5 दिन का कोर्स है तो पूरा करना पड़ेगा, और ब्रह्म विद्या का कोर्स कैसा है, ये लाइफ टाइम है। मोबाइल में आप क्या चाहते हो, लाइफ टॉक टाइम, और 5-10 साल का ही होता है तब भी उसको लाइफ टाइम बोल देते, आजीवन कारावास किसके लिए, बदमाश को सुधारने के लिए। वैसे ये जो हम लोगों के लिए है ब्रह्म विद्या का अभ्यास कैसा चाहिए, आजीवन, बस इसको दिमाग से निकाल दो, कितने दिन करना है, कब तक करना है। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ताच सर्वावनी, जिसने एक क्षण के लिए अपने मन को उस परमात्मा में लगा दिया, उसको संपूर्ण पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। कि कितना बड़ा फल है, आपको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल गया, संपूर्ण पृथ्वी भूमि दान करने का भी फल मिला। दत्ताच सर्वा अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, दत्ता उसने दे दिया, जिसने एक क्षण के लिए अपने मन को उसमें लगा दिया। त्रैलोक्यस्य समुद्धृता स्वपितर। तीन लोक त्रैलोक्य यहां ले लो, 21 पीढ़ी समझ लो, और तीनों भुवन उसमें जितने भी आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब की आराधना करने का भी फल मिल जाता है। किसको? जिसने अपने मन को एक क्षण के लिए उस परमात्मा में स्थिर कर दिया। स्थिर करने वाली बात है। त्रैलोक्यस्य समुद्धृता स्वपितरः, अपने पितरों का भी उद्धार कर दिया। 21 पीढ़ी ले लो, सात्रिका 21। त्रैलोक्य पूज्योप्यसु, तो ये दत्तात सर्वावनी। और त्रैलोक्यस्य समुद्धृता स्वपितरः त्रैलोक्य पूज्योप्यसु, यज्ञानाम च कृतम सहस्रम, संपूर्ण यज्ञों को करने का भी फल उसको मिल जाता है। एक एक यज्ञ कहां तक करोगे? न तो इसी सामग्री मिलना, इसे देश काल अनुकूल होना, सब कुछ कठिन है आज के युग में, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यज्ञानाम च कृतम सहस्रम, हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। अखिला देवाश्च, संपूर्ण देवों की पूजा करने का फल मिल जाता है, पितरों के उद्धार करने का फल मिलता है, और यहां तक कि दुनिया में मन लगाओगे तो लोग क्या कहेंगे? बात तो करता है किसकी? ये मन है ना, मन लगा करके विवेक चूड़ामणि में आया ना, हम लोग द्विविधा में रहते हैं। और ये तो प्रसिद्धि भी है कि दो नाव में पैर रख करके नदी पार नहीं कर सकते। हम लोगों के अभी क्या हाल है? क्या चाहते हो आप? घर की सारी व्यवस्था ठीक रहे, शरीर का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, और साथ में आगे इसमें आने वाला है देह आदि के माध्यम से ही उस परमात्मा को जानना है। और ये तो आप पहले भी सुने हो, शरीर पोषणार्थी सन, शरीर का पोषण करता हुआ, शरीर से संबंधित जो भी चीजें सब आ जाएंगे इसमें। क्योंकि उस दिन बताया था ना, वित्तात पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिंडात पिंडः पिंडः पिंडात तथेन्द्रियम्, और इंद्रियेभ्य प्रिय प्राण प्राणाद आत्मा प्रिय पर। ये क्रम है, वित्तात पुत्र प्रिय, धन से धन की अपेक्षा कौन प्रिय है? पुत्र। बीमार हो गया, इलाज कराने में आप खर्चा करोगे, वहां पैसे की नहीं देखोगे, इसलिए वित्तात पहले तो धन प्रिय था, लेकिन पुत्र के सामने धन गौण हो गया, पुत्र की प्रधानता हो गई। पंचदशी आप पढ़ोगे, अंतिम अंतिम में आया है सब विस्तार से, ब्रह्मानंदे आत्मानंद प्रकरण में गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा और मुख्य आत्मा करके अलग अलग प्रतिपादन किया है। तो गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा मोटे मोटे समझ लो, फिर जब आगे आएगा प्रसंग विचार कर लेंगे। शरीर से भिन्न वस्तु में जो आत्मत्व बुद्धि होती है उसको गौण आत्मा कहते हैं, और शरीर को जो आत्मा मानते हैं ये ज्ञान होने के बाद मिथ्या साबित होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मिथ्या आत्मा। और मुख्य आत्मा तो मुख्य आत्मा है ही, शुद्ध आत्मा कह लो, मुख्य आत्मा कह लो, ये दो आत्मा में उतार चढ़ाव होता है। गौण आत्मा तो सुस्पष्ट है कि अपने से भिन्न है, फिर भी हम लोगों का इतना अध्यास है उसमें, बेटा तुमने खा लिया तो समझ लो मैंने खा लिया, तू यदि प्रसन्न होता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और बेटा कह दे भाई ठीक है पिताजी, अब खाने का झंझट आप मत करो, आपके बदले मैं ही खा लिया करूंगा, तब आप क्या कहोगे? कैसा आदमी है वो, तो केवल अध्यास करते हो, मानते हो, एक दिन रह भी लोगे भूखे, चलो कोई बात नहीं, आज इसने खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज हो सकता है क्या? तो अपने से सर्वथा जो भिन्न दिखाई देवे उसमें जो आत्मत्व बुद्धि होती है, तो ये सब उसमें आ जाएंगे, पुत्र मित्र कलत्र धन संपत्ति ये सब के सब गौण आत्मा के अंतर्गत आते हैं। शरीर पोषणार्थी सन, इस तरह से मिथ्या आत्मा को आत्मा मानता हुआ फिर जो मुख्य आत्मा है उसको पाने की जो कोशिश करता है, यह आत्मानम दिदृक्षति, द्रष्टुम इच्छति, देखने की इच्छा करता है। ग्राहम दारुधिया, जैसे नदी के किनारे खड़े हो गए, नाव की प्रतीक्षा करते रहे, नाव वाला तो दिखा नहीं, और इतने में एक बहुत जबरदस्त मगरमच्छ आया। उस मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके नदी पार कर सकते हैं कि नहीं? कभी धोखे से बैठना मत, यहां पर हम लोग वही कर रहे हैं। मगरमच्छ के ऊपर बैठकर जैसे नदी पार करना असंभव ही है, असंभव सा नहीं, सर्वथा असंभव है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हम लोगों का मन है, यदि अनात्मा ग्रही बनेगा, आत्मा में अनात्मा में आग्रह वाला बनेगा तो किससे दूर होंगे? आत्मा से। और आत्मा की तरफ यदि आपको बढ़ना है तो हमारे आचार्यों ने पूरी व्यवस्था बनाई है किस तरह से साधक को लगना चाहिए। तो ये पंक्ति लिख लो याद करने के लिए, परमात्मा की उपासना करने का तरीका बता दिया, अनात्मा दर्शनेनैव परात्मानम उपास्महे। अनात्मा अदर्शनेन एव, अनात्मा के अदर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। जिस जगत को हम लोग आंखों से देख रहे, कान से सुन रहे, इसको यदि आप आत्मा के रूप में देखो तो आपको फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपको अनात्मा के रूप में दिखाई देवे तो इसको देखने की इच्छा मत करो। दर्शन जो बोलते हैं ना, दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है ज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिलोसफी बोलते हैं। बड़े दार्शनिक हैं, तो दार्शनिक का मतलब ही होता है ज्ञानी। दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा देखा जाए, जो परमात्मा का बोध करावे वो दर्शन है। वेदांत दर्शन, सभी दर्शन ही तो नाम रखा है, षड दर्शन, द्वादश दर्शन, उसमें आस्तिक छह दर्शन है, छह नास्तिक दर्शन है। तो ये हमारे थे कांदीवली वाले महाराज जी, द्वादश दर्शन कानन केसरी, बारह दर्शनों के शेर, केसरी कानन केसरी, कानन मतलब जंगल, बारह दर्शन रूपी जंगल के वो क्या थे? शेर थे। ऐसा नहीं कि किसी दर्शन में उनकी गति न हो, हम लोग तो एक वेदांत दर्शन भी तैयार कर ले तो बहुत है, बाकी दर्शन सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, फिर उधर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्धों के चार वेद, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार, सूत्रांतिक, क्या क्या याद करोगे? बस अपने तो इतना ही काफी है कि असी ब्रह्मा और तुसी ब्रह्मा, हम भी ब्रह्म और यहां जितने भी बैठे हैं सबके सब क्या है? इसलिए बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। आचार्यों की सरलता देखोगे ना, मधुसूदन सरस्वती जी सिद्धांत बिंदु में अंतिम में मंगलाचरण में लिखते हैं, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरु रेव मे नहीं। यहां पर जो जो अच्छी चीजें हैं सब वो गुरु जी के हैं, मेरे नहीं है। और यदत्र असौष्ठवम किंचित तत् ममैव गुरोर नहीं, जो भी इसमें खराब चीजें वो सब मेरे हो, गुरु जी के नहीं है। यह है आचार्यों की सरलता। हम यदि थोड़े आचार्य बन जाए, विद्वान हो जाए, तो हम गुरु को ही चुनौती देने लगते हैं, और गुरु तो गुरु ही रहेंगे ना, चेला चेला ही रहेगा, बेटा बेटा ही होगा, बाप बाप ही होगा। कितने भी शीर्षासन कर ले, बेटा बाप नहीं बन सकता और चेला गुरु नहीं हो सकता। हाँ, अब गुरु भी महान हो, जैसे बोलते दुनिया में सर्वत्र विजय प्राप्त करने की इच्छा रखो, लेकिन पिता को पुत्र से हारने की इच्छा रखनी चाहिए और गुरु को शिष्य से हारने की ही इच्छा रखनी चाहिए। उसमें एक आनंद है, वाह मेरा चेला मुझसे भी आगे निकल गया, मेरा बेटा मेरे से भी आगे निकल गया। बेटे के साथ कंपटीशन करोगे, चेले के साथ प्रतियोगिता करोगे, लोग क्या कहेंगे? वो तो हंसेंगे, अरे अपनी ही चेला है आगे जा रहा है तो आप उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए शुभकामना करो, पुत्र है आशीर्वाद दो। तो ये आचार्य जी की सरलता इतनी है, मधुसूदन सरस्वती जी ने ऐसा लिखा है, यदत्र असौष्ठवम किंचित और यदत्र असौष्ठवम किंचित, जो उसमें अच्छाई है वो गुरु जी की है और जो खराब चीज है वो सब मेरे हैं। एक बार एक महात्मा का ऐसे नाम था, हमने कहा महाराज आपके नाम के कई लोग मिल जाते हैं, हमको भ्रम हो जाता है कि ये आप हैं कि और हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो विनोदी स्वभाव के, बोले कि जहां अच्छा अच्छा काम हो वहां आप मेरा नाम समझ लेना, जहां खराब काम हो उसमें दूसरे का नाम लगा देना। तो ये तो कहने वाली बात है, और ऐसी इच्छा भी हम लोगों की रहती है कि अच्छे काम में हमारा नाम हो और खराब में दूसरे का नाम आ जाए। तो ये जो शरीर पोषणार्थी सन के द्वारा मन एक है, इस मन को परमात्मा में लगाए बिना हमारा कल्याण हो नहीं सकता, जिसके लिए शास्त्र में इतनी प्रशंसा की गई कि संपूर्ण पृथ्वी के दान करना, समस्त तीर्थों के स्नान करने का, हजारों यज्ञ करने का, समस्त देवी देवताओं के पूजन करने का, पितरों के उद्धार करने का, और यहां तक कि वह स्वयं भी तीनों लोक में पूजित हो जाता है, पूज्य दृष्टि से देखा जाता है उसको। त्रैलोक के पूज्योप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी लग जाए, स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, असंप्रज्ञात समाधि में जाने से पहले। वो समाधि हम लोग लगा पाएंगे कि नहीं? लय विक्षेप रहितम मनः कृत्वा सुनिश्चलम यदा यात्यमनी भावम तदा तत्परमं पदम तावन्मनो निरोद्धव्यम हृदि यावद् गतक्षयम् एतद् ज्ञानम च मोक्षश्च शेषास्तु ग्रंथ विस्तरः। ज्ञान किसका नाम है, मोक्ष किसका नाम है, ये यदि आपने समझ लिया तो बाकी तो ग्रंथों का केवल विस्तार करना है। जैसे पंचदशी में आता है, नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्, बहुत सारे शब्दों के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। जैसे संस्कृत व्याकरण में आता है कि कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, यदि आपने कौमुदी पढ़ लिया तो भाष्य में परिश्रम करना बेकार है, और कौमुदी यदि न आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, और यदि कौमुदी नहीं आई तब भी भाष्य में परिश्रम करना बेकार है। वैसे यहां पर भी लिखा, ये विवेक चूड़ामणि में, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, यदि आपने उस परम तत्व को नहीं जाना तो अनेक शास्त्रों के अध्ययन करना भी बेकार है, और विज्ञातेपि परे तत्व, यदि आपने उस परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। हाँ, बढ़िया प्रवचन करेंगे, अच्छे भंडारा खाने को मिलेगा। महात्मा लोग मजाक करते, सिर मुड़ाई तीन गुण मिटे सिर की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, ओम नमः पार्वती पते हर हर। आप लोग समाधि में चले गए क्या? यहीं रहना भाई, कहीं जाना मत, समय हो गया है। एक अच्छी बात सुना देता हूं, एक दृष्टांत आप लोग सुनते ही है। जो हमारे पास ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आदि मन के द्वारा संचालित होते हैं, हैं तो ये हमारे सेवक, और इसका जो मालिक है मन, वो स्वयं गड़बड़ करने लगा। नदियों के स्वामी हैं समुद्र, यथा नदी नाम प्रभव समुद्र, और आहुतियों के स्वामी है अग्नि, यथाहुति नाम प्रभवो हुतासना, और देवताओं में श्रेष्ठ माने गए भगवान विष्णु, वैसे ही इंद्रियों के स्वामी कौन है? मन, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। मन को भी इंद्रिय इसने कह दिया कि ये इंद्रियों के स्वामी है, अंतःकरण का भेद करते हो। ये जो मन है, मन लगा करके और अनमने ढंग से, अनमना ढंग बोलते हैं ना, अनमना का मतलब क्या होता है? अर्धमना। मन तो लगाया लेकिन ढंग से नहीं लगाया। कभी आया किसी ने कहा कर दिया, या किसी को देखा देखी कोई कर रहा है, चलो हम भी कर लेते। इस तरह से करने वाले वही हाल है जो दृष्टांत आप सुने हुए हो। कौन था? एक मदारी था ना, मदारी, डमरू बजाना, साथ में पांच बकरियों को रखता था और पांच बंदर भी थे। बंदरों को नचाता था और उससे अपनी आजीविका चलाता था, उसका गुजारा चलता था। तो रास्ते में एक दिन जा रहा था जब, तो एक जगह कोई विश्राम के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे संत। महात्मा जी ने कहा, भाई ये सब क्या है? बोले, महाराज मैं तो मदारी हूं, नचाता हूं, नाच दिखलाता हूं, गुजारा करता हूं। अरे भाई जरा हमें भी दिखला। अब कहता है, नहीं नहीं आपको क्या देखना, अरे दिखाओ तो सही। उसको लग रहा था फ्री में देख लेंगे, कुछ देंगे नहीं। फिर मन में आया, चलो बाबा जी क्या पता कोई जड़ी बूटी दे दे। तो उसे दिखाया, उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा खेल दिखाया तुमने, अब तुमको भी तो हमें कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए तुम आंख बंद कर, और जब तक मैं न बोलूं तब तक खोलना मत। 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कहीं नहीं रहे आंख खोलने के लिए, उससे रहा नहीं गया। खोला तो देखता है बाबा जी भी गायब, बकरी भी गायब, बंदर भी गायब, डमरू भी गायब। बोले, तो अच्छा खेल दिखाया हमने, हमारी आजीविका ही चौपट कर दिया। लगता है इन्होंने मेरा खेल सीख लिया, हम ये स्वयं कमाएंगे, इसने सारी चीज गायब कर दी। बड़ा निराश होकर के चल रहा था आगे आगे, दो चार कदम चला नहीं होगा कि इतने में उधर से लोग आ रहे थे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाथी अपनी सूंड में माला ला करके और उसी मदारी के गले में डाल दिया। वहां की प्रथा ऐसी थी कि राजा जब गुजर जाए तो उसके बाद हाथी के सूंड में माला डाल देते थे, और वो जिसको पहना देवे उसी को राजा मान लिया जाता था। अब उसके मन में आया कि देखो, हमने थोड़ा सा खेल दिखाया तो बहुत जबरदस्त जड़ी बूटी मिली, राजा बनने को मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन स्वभाव से तो था मदारी, राजपाट में व्यस्त हो गया, उसको पता ही नहीं कि मैं पहले कौन था, अभी क्या हूं, आगे फिर क्या होना है। जब थोड़े दिन के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, तो अभी वाला मामला तो था नहीं कि पार्लियामेंट में बैठे बैठे आप लड़वाते हो, स्वयं लड़ने नहीं जाते हो, और जीतने के बाद बोलते मैंने जीता। वहां तो राजा को भी लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज अब युद्ध छिड़ गया, चलना पड़ेगा। था तो मदारी न, बोलता है मुझे भी जाना पड़ेगा। बोले, आपके गए बिना होगा कैसे, आप तो हमारे राजा हैं। अब बड़ा दुखी हुआ मन ही मन, सोचा क्या होगा, युद्ध में मारा जाऊंगा, बिना मतलब के राजा बन गया, चलो लड़ना तो पड़ेगा ही, पीछे भी नहीं हट सकते। जब जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में वही दृश्य जहां पर वो बाबा जी मिले थे, मदारी का जो खेल दिखाया था वो जगह देख, तो वही बाबा जी भी बैठे हुए दिख गए। अब उसको थोड़ा बल आ गया कि हो ना हो, देखो इन्होंने कृपा की तो राजा बना दिया, आज भी थोड़ा इनसे आशीर्वाद ले लूं तो लड़ना न पड़े, लड़े बिना अपना काम हो जाए, या लड़ना भी पड़े तो जीत जाऊं। इस भावना से हो गया। बोले, महाराज कुछ कृपा करो। बोले, अच्छा आंख बंद करो भाई, ध्यान लगाओ। लगाया तो थोड़ी देर में वही बंदर, वही बकरी, गाजे बाजे मंत्री सब गायब, जो मदारी का कपड़ा था वही कपड़ा भी आ गया। बोले, महाराज मैं तो आपको केवल बोल रहा था युद्ध में विजयी हो जाऊं, आपने तो मेरा राजपाट ही छीन लिया। उन्होंने कहा, देखो थोड़ी देर के लिए तूने मुझे खेल दिखाया, इसलिए हमने भी खेल दिखा दिया। ये मदारी के तरह जो जीवात्मा का हाल है, मन लगा करके तो खेल दिखाया नहीं था, कैसे दिखाया था, अनमने, चलो कह रहे क्या पता कुछ हो जाए। ये जो हम लोग मन लगाते हैं, भगवान को मानते भी हैं और कभी कभी मन में जब आपका निश्चय डगमगाने लग जाए, और निश्चय का मतलब है निष्ठा, निश्चय मतलब निष्ठा, निशेषेण चयनम, जो आपको चयन करना था वो आपने चुन लिया, जब तक आपका चुनना बाकी है, बाकी रहेगा, तब तक उसको निष्ठा नहीं कह सकते। निष्ठा का मतलब है स्था गति निवृत्तो से निष्ठा शब्द की निष्पत्ति होती है व्याकरण के हिसाब से, जहां पर गति की निवृत्ति हो जाए, चलना बंद हो जाए, कि जो मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया। अभी लोग घबरा जाते हैं, कई बार लोग बोलते हैं महाराज आप भागवत भी करते हैं, पुराण की भी कथा करते हैं आप, तो हमने कहा कोई अपराध करता हूं क्या। हमारे आचार्य हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, श्रुति स्मृति और पुराणों के आलय हमारे आचार्य। आचार्य दंडी थे, लोग बोलते कर्म के विरोधी थे, उनके जैसे भक्ति करने वाले, उनके जैसे कर्म करने वाले कोई नहीं हुआ। यमुनाष्टक, गंगाष्टक, नर्मदाष्टक जो आप पढ़ो, ये सब आचार्य की कृति है, वो भला कर्म के विरोधी, उपासना के विरोधी कैसे हो सकते हैं। हम यदि नहीं समझ पाए तो इसमें हमारा ही दोष माना जाएगा, उनके ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। तो जो बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए ये जो दशश्लोकी है एक पाथेय है, इसमें बहुत गहन चिंतन किया है। तो ये जो हम लोगों का मन है, थोड़ा बहुत भी अनमने ढंग से भी लगाते हैं तो एक मदारी को इतना बड़ा फल मिलता है। तो हम लोग भी एक तरह से मदारी ही हैं, अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा खेल खेल रहे हैं, आजीविका हमारी चल रही है, लेकिन यदि इसी को हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा की तरफ लगाते, उनको ये खेल दिखाते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी कि हम हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, हुए हुए हैं। जो अभी नहीं है, नहीं सा लग रहा है, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं ना, बोलते हैं तो ब्रह्मलीन का अर्थ वहां शंका होती है कि ब्रह्म में लीन होता है मानोगे तो आधार आधे भाव बनेगा, द्वैत की आपत्ति आ जाएगी। तो ब्रह्मलीन का अर्थ कर दिया ब्रह्मणी लीनम इव, ब्रह्म में लीन की तरह होता है, कैसे, पानी में पानी की तरह जैसे मिलता है, पहले बता दिया। तो जल में जल की तरह से मिलना, अग्नि में अग्नि की तरह से मिलना, वैसे जीवात्मा को परमात्मा में मिलना समझ लेना चाहिए। अब बाकी जो विषय है आगे जब समय होगा उसमें फिर इसका विचार किया जाएगा। आज यहीं पर इसको विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमपुरी अध्यात्म भवन विद्या भवन में आने वाले सभी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं समस्त दृष्टिगण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुलनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज श्रावण के सोमवार भी है इसलिए भगवान के चरणों में अपनी बाग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हरिओम।
हरिओम। हम सब की ओर से, स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से और महिला मंडल की ओर से स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी ने सुबह और शाम दो टाइम सुंदर प्रवचन दिया, उसके लिए खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। अगले साल स्वामी जी 1 मई से 20 दिन तक आने वाले हैं और उन्होंने संबद्ध दिए, उसके लिए और धन्यवाद और फिर से चरणों में वंदन।